शांति। सभी मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स देख के आए, जो देख के आए हाथ ऊपर करें। ओम शांति। कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा, ऐसा ना? तो आप देखिए कि अभी बाबा का घर इतना अच्छा है तो फिर हाँ क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, है ना? तो अभी जो आज लास्ट का विषय मिला है, कौन सा मिला है, कौन सा विषय है? स्वर्णिम भविष्य। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से ये भट्टी की है, और बाबा जो हमें कहते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए, 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। वो 21 जन्म कौन से हैं, कौन से हैं? हाँ, सतयुग और त्रेतायुग। सतयुग के कितने जन्म हैं और त्रेता युग के तो कितने हुए? तो 21वां कहाँ है? 21वां यही, मतलब पहला जन्म ये है ना? किसका? स्वर्णिम भविष्य का पहला जन्म कौन सा है? ये है। हाँ, क्या? मर्जीवा जन्म। हाँ, ये बाबा के साथ जो हमारा जन्म है, ब्राह्मण जन्म, वो है पहला जन्म जो बाबा की तरफ से हमें वर्षे के रूप में मिला है। तो ये जन्म जो हमारा है, ये जन्म है, बाबा कहते हैं कि वो तो गोल्डन एज होगा, है ना? परंतु ये कौन सा एज है? डायमंड एज है। तो सतयुग में तो आनंद होगा, है ना? सतयुग का वर्णन है वो तो हम बाद में देखते हैं, हमको पता भी है। आज तक हमारे भारतवर्ष के वो सतयुग का गायन है ना? कौन सा गायन है? आज भी गाते हैं लोग, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। और जो बाबा कहते उस अनुसार उसमें लाइन आती है, जहां हर बालक एक मोहन था और राधा एक एक बाला, अर्थात हर व्यक्ति वहां जैसे कि श्री कृष्ण था और राधा था। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को, बाबा हम सभी बच्चों को उस दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, ले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, परंतु उस दुनिया को लाने की जिम्मेवारी भी बाबा ने किसको दिया है? हम बच्चों को दिया है। तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि जो हमारा भविष्य है उसका आधार क्या है? वर्तमान, है ना? ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो पहला जन्म का सुख है वो हमें महसूस हो रहा है। स्वर्ग तो आएगा इस दुनिया में, परंतु पहले कहां आएगा? पहले कहां आएगा? स्वर्ग पहले कहाँ आएगा? हाँ, कहाँ आएगा? थोड़ा बड़ी आवाज से बोलिए। बाबा के बच्चों के पास, पर कहाँ? हाँ, मधुबन में कहाँ? हाँ, सोचिए कहाँ आएगा? यमुना के कंठे आएगा। अच्छा, कहाँ आएगा? बाबा के घर में। आपके घर में नहीं, आपके घर में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? आप देखिए कि आपको एक मकान बनाना है, समझो एक मकान बनाना है, तो वो मकान पहले कहाँ बनता है? मकान पहले कहाँ बनता है? मन के अंदर, है ना। सबसे पहले विचार आता है कि मुझे मकान बनाना है, और उसकी प्लानिंग चलती है ना, कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। मन में पूरा नक्शा तैयार हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए, उसके बाद व्यक्ति उसको ऑन पेपर करता है। तो स्वर्ग कहाँ आएगा? सबसे पहले स्वर्ग कहाँ आएगा? हमारे मन के अंदर। सबसे पहले स्वर्ग हमारे मन के अंदर आएगा, और बाबा हमेशा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे इस धरा पर स्वर्ग का जो पहला दिन होगा, है ना, स्वर्ग का जो पहला दिन होगा वो जरूर अनुभव करना चाहिए। पहला दिन अर्थात बाबा कहते हैं मुरली में कई बार 1-1-1, उसका जरूर अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, संपूर्णता का अनुभव होगा, जो गायन है संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता। और जो कुदरत के 5 तत्व है वो भी अपने संपूर्णता पर होंगे, है ना। आप सोचिए संपूर्णता का सुख, वो पहली क्षण का सुख, स्वर्ग की पहली क्षण का सुख लेना चाहिए, लेना चाहिए। कौन लेगा? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। वैसे हम कहते हैं कि भाई स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, और बाबा कहते हैं कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको पद मिलेगा। ये तो ठीक है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा, परंतु सतयुग की पहली क्षण के अनुभव करने का अधिकारी कौन बनेगा? उसका आधार क्या? हाँ, तो आप सोचिए कि वहां जाने का जो अधिकार है, स्वर्णिम जो क्षण होगी पहली, वो मैक्सिमम सुख का अनुभव, मैक्सिमम, हमेशा सुख के भी लेवल्स होते हैं, है ना, सुख के लेवल्स होते हैं। और अभी इस आजकल की दुनिया में भौतिक सुख, कर्मेंद्रियों के सुख का लोगों को केवल अनुभव होता है, तो इंद्रियों के द्वारा सुख अर्थात खाने का, टेस्ट का, स्वाद का सुख, सुनने का, किसी को गीतों सुनने का सुख होता है, देखने का सुख है, स्पर्श का सुख है, ये कर्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख है, उसका एक लेवल है। परंतु आपको अनुभव है कि उससे भी बढ़कर के, आपने अनुभव किया होगा कि कभी आपने किसी को खाने का सुख तो है, परंतु कभी किसी को खिलाने का सुख अनुभव किया है? किया है, किया होगा। आपके घर कोई मेहमान आते हैं और आपने उसकी बहुत अच्छी तरह से खातरी की और वो बहुत खुश हुआ, तो आपको अंदर में क्या होता है? सुख महसूस होता है। लेने का सुख तो पता है, परंतु कभी देने का सुख महसूस किया है? जरूर किया है। वो सुख की जो लेवल है वो ऊंची है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक गांव के अंदर एक संत जाते हैं और संत ने देखा कि ये कैसा गांव है जिसमें एक भी मंदिर नहीं है, तो सोचा कि मंदिर तो होना चाहिए गांव में। थोड़े लोगों से पूछा कि मैं यहां आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपके गांव में एक मंदिर हो, तो आपके गांव में कौन ऐसा सबसे धनवान व्यक्ति है उससे हम पहले दान की शुरुआत करते हैं और सबसे थोड़ा थोड़ा दान लेकर के एक मंदिर बना देते हैं तो अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हमारे गांव में कोई देने वाला है नहीं और सबसे धनवान है वो तो बहुत मनहूस है, एक पाई कभी नहीं देगा। संत कहता है कोई बात नहीं, पर मुझे उसके पास तो ले चलो। लोगों ने कहा नहीं देगा महाराज, आप मेहनत मत कीजिए। साधु कहता है नहीं, मैं तो जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। गए, सेठ जी से मिले, वही जवाब मिला कि देखो मैं तो एक पाई नहीं दूंगा, मैं देने में मानता ही नहीं हूं। संत कहते कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, परंतु आप एक काम तो कीजिए कि अभी सुबह सुबह में मुझे एक चेक दे दीजिए, 50,000 का चेक दीजिए, मैं वो बैंक में जमा नहीं कराऊंगा, शाम को आपको वापस दूंगा ये पक्का। कहते हाँ ठीक है, फिर मैं दे सकता हूं। साधु ने वो चेक लिया, चेक लेकर के फिर गांव में अनेक लोगों के पास गया। सबको लगा कि ये महामनहूस है, उसने इतना दिया तो हम नहीं देवे। तो ऐसे करते करते काफी दान इकट्ठा हो गया और शाम को वो सेठ के पास गए और कहा कि सेठ जी आइए, चेक आपका वापस देने के लिए आया हूं। सेठ ने कहा कि नहीं चाहिए, चेक वापस नहीं चाहिए। आज मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने देने का सुख महसूस किया है, समझा? आज तक मैं यही समझता था कि धन इकट्ठा करने में ही सुख है। आज सुबह में जब से मैंने ये आपको चेक दे दिया है तब से मेरे को इतना सुख महसूस हो रहा है। और साथ साथ कई लोगों के फोन आए कि अरे आपने ये चेक दिया, मानने में नहीं आता है, कैसे आपके अंदर ऐसी अच्छी वृत्ति पैदा होगी, तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे गांव में एक मंदिर होगा। तो उन्होंने महसूस किया कि ये धन कमाने का सुख है, इकट्ठा करने का सुख है, परंतु उससे ज्यादा देने का सुख है। सुख की भी लेवल्स होती है और उससे भी ज्यादा सुख जो है वो आप सबको पता है, बाबा के तहत इंद्रिय सुख है, बाबा के साथ मिलन मनाने का सुख है। पर मिलन मनाने का आधार जो आपने इन चार दिनों की भट्टी में भी देखा, आधार है संपूर्ण पवित्रता। ये एक अच्छा, जिसको हम कहते हैं कि प्रेशियस सर्कल है। हम पवित्र बनते हैं आत्माएं, बाबा से योग और अच्छा लगेगा और आत्मा और ज्यादा पवित्र बनेगी। हम निर्विकारी बनते हैं, बहुत अच्छा योग बाबा से लगता है, जितना बाबा से योग लगता है फिर आत्मा पवित्र बनती जाती है। ऐसा करते 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 हम संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बनते हैं। सतयुग की स्थापना का मुख्य आधार संपूर्ण पवित्रता है और जो जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती है, बाकी बहुत क्वालिफिकेशंस है ना, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, ये सब क्वालिफिकेशन से पद मिलेगा, श्रेष्ठ कर्मों से पद मिलेगा, परंतु एंट्री जो मिलेगी वो किसे मिलेगी? संपूर्ण पवित्रता से मिलेगी। और जो पहली क्षण के सुख की बात है, जो जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती है, संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है, पवित्रता से ही संपूर्ण सुख का कनेक्शन है। तो इसीलिए जो बाबा हमें कहते हैं कि अभी जो बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं वो पुरुषार्थ के आधार पर पहला जन्म तो हमारा यही है जिसको हम इमीडिएट फ्यूचर कहेंगे, है ना, तुरंत का भविष्य। और तुरंत का भविष्य तो उसको कहेंगे जो अभी अभी अभी, जितना जितना हम बाबा के ज्ञान को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, आत्मा जितना महसूस करती है और जैसे ही महसूस करेगी वो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला जन्म है, पहले जन्म में ही अभी अभी से हमें क्या महसूस हो, हम कहाँ हैं। संगम युग में बाबा के साथ तो है परंतु क्या अनुभव हो हमें, हम स्वर्णिम युग में हैं, ऐसा अनुभव होता है, क्या कहेंगे। एक भाई ने अपने सवाल में लिखा था कि हम कब तक तपस्या करेंगे, है ना, एक सवाल था उसमें कि हम कब तक तपस्या करेंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, है ना, कि तपस्या में भी हम जैसे कि तपस्या नहीं कर, आनंद नहीं ले रहे हैं, पर जैसे एक काम कर रहे हैं, कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं कब तक ये कार्य चलेगा, कब तक कार्य करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या कोई कार्य नहीं है, वो क्या है, आनंद है। तपस्या एक वर्क नहीं है, कार्य नहीं है जिससे हम थक जाएं, ये शारीरिक बैठक का काम नहीं है, घंटों तक बैठे रहने का काम नहीं है, परंतु ये कार्य है आनंद का। तो हमारा ये जो जन्म है, इस जन्म में अभी हमें देखना है कि मुझ आत्मा को अभी इस संगम युग का वो आनंद अनुभव हो रहा है, इसके आधार पर हम भविष्य प्राप्ति करने वाले हैं। तो जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो क्या लक्ष्य है उस बात को हम समझ लेते हैं। दो प्रकार की बात है, एक है इंडिविजुअल लक्ष्य, एम, व्यक्तिगत रूप से बाबा ने हमें क्या एम दिया है, स्वर्णिम भविष्य के लिए क्या एम दिया है, व्यक्तिगत, वह एक एक व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या होगी, सर्वगुण संपन्न, आप सोचिए, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर आज जो सुबह में क्लास हुआ क्या हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम है परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम, और अहिंसा परमो धर्म, ये व्यक्तिगत लक्ष्य है। और जहां पूरा राज्य चलने वाला है, जहां राज्य चलेगा जो सिद्धांतों के आधार पर चलता है, और उस राज्य की क्या विशेषता है, सत्युग के राज्य, ये व्यक्ति की विशेषता ये हुई, राज्य की विशेषता क्या है, हाँ, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, हाँ, एक मत, एक धर्म, है ना, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, हाँ, एक कुल, एक भारत। तो ये हमारी सैद्धांतिक रूप से विशेषता है आने वाले भारतवर्ष की, और वो कहाँ स्थापन करना है, यहां अभी स्थापन करना है। तो हमारी दो जिम्मेवारी है, एक व्यक्तिगत रूप से हमें उसको पूरी करना है और दूसरी संगठित रूप से, सामूहिक रूप से, संगठित रूप से पूरी करनी और उसकी प्रैक्टिस अभी संगम युग के अंदर करनी, जिसके लिए हम कहते हैं जहां संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता है। क्या है? संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता, अथवा जिसको हमने जैसे कहा कल, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। जहां हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो स्थापना हम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत अभी से है। और अभी से शुरुआत करने को ही हम कहेंगे, है ना? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि नाउ ऑनवर्ड्स? हर एक व्यक्ति अपने आप के लिए सोच सकता है कि अभी अभी हमें ये कलयुग का किनारा छोड़ देना है। कलयुग का किनारा छोड़ देना है, छोड़ दिया है कि अभी छोड़ना है? क्या कहेंगे? छोड़ दिया है कि भूल से, जैसे बाबा कहते हैं ना कि नाव में तो बैठ गए, ये तो नक्की कर लिया है कि भी इस पार से उस पार जाना है। ज्ञान और योग भी साथ में है, जिसको हलेसा कहते हैं, नाव को चलाने के लिए वो भी है, ज्ञान और योग। और हम जा रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, नैया हमारी डोल रही है, हलेसा चल रहा है। पर कभी कभी क्या होता है, क्या होता है? हाँ, रस्सी छोड़ना भूल जाते हैं। नाविक को क्या करना पड़ता है? सबको पहले बिठा देगा, नाव को तैयार कर देगा और फिर क्या करेगा? किनारे से रस्सी को छोड़ना पड़ता है। हम सारी तैयारी कर लेते हैं, ज्ञान और योग से चल भी पड़ते हैं, और क्योंकि नौका डोलती है तो लगता है हम चल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, चल रहे हैं। सारी रात चलते रहते हैं और सुबह उठ के देखे तो वही के वही। अगर रस्सी छोड़ना भूल गए तो बाबा भी हमें ये कहते हैं कि अगर रस्सी छोड़ना भूल जाएंगे तो पहुंचना मुश्किल है। तो रस्सी का अर्थ क्या है? हाँ, कि आज भी है ना, कलयुग में दो बातें होती है, कलयुग में दो बातें, सतयुग में एक है, खाली सुख है। कलयुग में क्या है? सुख भी है और दुख भी है। तो उससे, कलयुगी किनारे से अपनी रस्सी को छोड़ देना, अर्थात कलयुग में मिलते हुए चाहे सुख है या दुख है, पर उसको स्वीकार नहीं करना। अगर सुख को स्वीकार किया तो दुख जरूर स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें सावधान हो जाना है, जागृत हो जाना है, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, जागृति कहते हैं। और बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे अभी हमें कलयुगी किनारों को छोड़ देना है। तो कलयुग के हिसाब से, कलयुग के अंदर बाबा कहते हैं कि मुख्य बात ही है देह भान की है, देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ। वो केवल दुख देते हैं ऐसा नहीं है, क्या करते हैं? उससे सुख मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को दुख मिल जाए तो व्यक्ति तुरंत छोड़ दे, परंतु क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सुख, भले बहुत ज्यादा दुख, परंतु वो थोड़े सुख को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। जैसे वो कहानी कहते हैं ना बंदर की, कि बंदर को दिखाई दिया कि भाई एक छोटे मुंह वाले बर्तन में चने हैं, लोटे में चना है, उसका मुंह छोटा है, अंदर डाल तो दिया हाथ, अंदर में चने हैं, क्या कर देता है, मुट्ठी में ले लेता है। अगर मुट्ठी लिया तो बाहर नहीं निकलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, अगर अपने आप को छुड़ाना है तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, और मुट्ठी खोलते हैं तो चना जाता है, चना पकड़ता है तो खुद बनता है। हमारी ऐसी हालत है कलयुग में, हमारी ऐसी हालत है। थोड़ा सा सुख अगर जाने देते हैं तो मजा नहीं आता है, और जहां तक वो जाने ना दो तब तक बंधन से छूट नहीं सकते हैं। तो कलयुगी किनारे को छोड़ने का अर्थ ये है कि छोटे छोटे सुख को उससे उपराम जाना सीखना होगा, और वो कलयुगी किनारा अगर हमने छोड़ा, जैसे सुख को छोड़ने की बात है, वो अगर अभ्यास बढ़ता जाएगा तो दुख को भी महसूस नहीं करेंगे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ दिया या नहीं दिया, अथवा कुछ हमारा खो गया, कुछ चला गया, है ना, इसी बातों ने हमारे मन को बांध के रखा है। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें सुख की महसूसता करने नहीं देते, तो तुरंत तो जिसको हम इमीडिएट फ्यूचर कहे वो स्वर्णिम बनाना हमारे हाथ में है। स्वयं का भविष्य स्वर्णिम बनाना किसके हाथ में है, किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। मुझे सुख महसूस करना है या दुख महसूस करना है, किसके हाथ में है, तो हमें क्या महसूस करना है, हाँ क्या महसूस करना है, क्या कहेंगे, क्या महसूस करना है, जिसको केवल सुख महसूस करना है वो हाथ ऊपर करे, बाकी अभी भी दुख महसूस करना चाहते हैं क्या, नहीं, नक्की करो, है ना, हम सब क्या करना चाहते हैं, बाबा के समय बहुत थोड़ा है, तो अभी क्या नक्की करते हैं, हम केवल सुख महसूस करेंगे, पक्का ऐसा संकल्प करें हम सभी मिलकर के, ये हमारी जो भट्टी है उसका यादगार रह जाएगा कि भाई अधर कुमार कभी दुख महसूस नहीं करेगा, है ना, क्या कहेंगे, मंजूर है, तो हाथ ऊपर करो। हम दादी को, फिर दादी जब आएंगे ना तो बताएंगे कि अभी हमने दुख महसूस करना छोड़ दिया, हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि हम अभी से नए युग की शुरुआत करते हैं। अभी से कहां, हमारे मन में, जहां संपूर्ण सुख है। परीक्षा आ सकती है, परंतु क्या करना है, हमें अपने आप में जो नक्की किया हुआ है, है ना, कोई ने हमारे साथ अच्छी तरह बात की, बहुत अच्छा, नई बात की क्या, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, उसे भी अच्छा, है ना, कोई ने बात की बहुत अच्छा, नई बात की बहुत अच्छा, किसी ने मान दिया, खुश नहीं होने का, ठीक है, पर नहीं दिया तो भी, अगर दिया उस समय बहुत सुख पा लिया तो नहीं मिलने से दुख मिलेगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसमें, इसी बात को कहते हैं कि साक्षी दृष्टा स्थिति, जो बाबा कहते हैं ना मुरली में, कि साक्षी बनकर के देखने का, जैसे हमारा पाठ चल रहा है, ये देखने का जितना अभ्यास होता जाएगा उतना हम सदा सुख की महसूसता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी, ये हमारा जो बाबा के द्वारा मिले हुए वर्षे का पहला जन्म है, और ये पहला जन्म का जो गायन हमारा है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा जन्म? ये ब्राह्मण जन्म। तो जैसे कहा कि सुख पाना हमारा काम है, उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण पवित्रता को धारण करना वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे स्वयं के हाथ में है। इसके लिए आपको कोई बंधन कभी भी आ नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, जब सेवा करनी होती है तो हो सकता है कि आपके पास कोई साधन चाहिए, समय चाहिए, आपकी तबीयत अच्छी चाहिए, ये हो सकता है। परंतु आप कहे कि मुझे अभी आज से बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, तो कोई बंधन है? कोई कहेगा क्यों नहीं क्रोध करेंगे, आपको जरूर करना पड़ेगा, आपको इतना जिम्मेवारी है, ऐसा है? कोई कहेगा? नहीं कहेगा, आपके अपने हाथ में है। आप मन में सोचते हैं कि मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, मैं समझ गया हूं कि इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक को अपने जीवन में आगे बढ़ने का चांस जरूर मिलता है, हर आत्मा को मिलता है। ड्रामा में इतने एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं, हर एक को मिलता है। तो कोई कहेगा कि आपको क्यों नहीं ईर्ष्या आती है? कोई कहेगा? नहीं, वो मेरे हाथ में। तो हर प्रकार से अपने मन को संपूर्ण पवित्र रखना वो हमारे अपने हाथ में है। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे शांत रहूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे अपने आप को खुशी में रखूं। खुशी में रहना अपना काम है, संतुष्ट रहना अपना काम है ना? सुख की मात्रा अलग अलग हो सकती है, जिसके लिए कहते हैं कि जो चाहा और मिला उसको सुख कहते हैं, परंतु जो मिला उसको चाहा उसको क्या कहेंगे? संतुष्टता। उसको संतुष्ट होने में कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा के हम सभी बच्चे जब अपने आप में ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि अभी हमारे लिए इस क्षण से ही नया युग शुरू है, संगम युग की भी सुख को महसूस करना है। जैसे बाबा कहते, लंबे समय से जिन्होंने ये सुख महसूस किया होगा, है ना, अभी से ही महसूस करना है, अभी ज्यादा सुख है। बाबा कहते सतयुग में इतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहां दुख ही नहीं होगा। तो हमें अपने पद का, अपने सुख की वो महसूसता नहीं होगी। अभी समय है, अभी हम महसूस कर सकते हैं कि लोगों को कितना दुख है, कितना अशांति है, छोटी छोटी बातों में अपने मन को दुखी करते हैं, अशांत करते हैं। और बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतनी शक्ति दिया है, जो अभी हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। लोग दुनिया में अभी तक भी ये लिखते हैं, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि अब ये समय आ गया है भगवान के आने का, कब आएगा, है ना? कई बार अभी तो कई आर्टिकल्स में ये लिखते हैं कि अब भगवान तो कब आएगा, वो तो कब आएगा करते हैं। और हम क्या कहते हैं? खाली कहते नहीं है, परंतु हम तो महसूस करते हैं। और कितने सुख, कभी ऐसा गायन होगा? बाबा पहले कहते थे, आप देखिए शुरू से हम जो बाबा से मिलते आए हैं, तो बाबा कहा करते थे कि आपका ये समय भी गायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप जो बहुत पुराने पुराने बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत पालना ली है, वो भी अभी क्या बन गया, एक इतिहास बन गया है ना। जो बहुत पुराने हैं वो कहते हैं कि हम तो बाबा से रूबरू मिलते थे, है ना, हम तो बातें करते थे बाबा से, बाबा ने हमें व्यक्तिगत रूप से वरदान दिया है। भक्ति जहां पर भक्ति इसलिए की जाती है, कोई भी भक्त होगा, ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा अपने जीवन में यही रख सकता है कि हमें एक एक झांकी हो जाए, एक बार दर्शन मात्र हो जाए और हमें हमें क्या मिला है। हम कोई सच्चा नहीं मानेगा, दुनिया में तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे हमको, है ना, परंतु हमें तो, हम बाबा से बात करते हैं, बाबा हमारे से घंटों भर बैठ के बात, आप सोचिए तो सही, है ना, सोचिए तो सही कि क्या क्या सुख है संगम युग का। लोग गाते हैं, जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं कि गोप गोपियों का गायन किसका है, अतीन्द्रिय सुख का गायन किसका है, गोप गोपी कौन है। लोग अभी कितना याद करते हैं गोप गोपियों को कि कौन होंगे। मुझे याद है कि अज्ञान काल में हम भी सोचते थे कि वो कौन होंगे जिन्होंने भगवान के साथ रास किया होगा, और ये गोपियां कमाल है, कितनी भाग्यवान होंगे। अज्ञान काल में, है ना, वो सुनते थे ना कि कृष्ण ने रास किया और वो गोपियों ने यमुना के कंठे पर रास किया, वो कौन होंगे व्यक्ति, कितने भाग्यवान होंगे। और अभी हम महसूस कर रहे हैं कि वो कौन है, वो हम ही हैं, है ना। कहां एक बार दर्शन करने की बात, और कहां अब तो हम बाबा के पीछे नहीं पड़े हैं, क्या है बाबा हमारे पीछे हैं। बाबा रोज 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 समझाते हैं। दादी गुलजार दादी जो बता रहे थे क्लास, उसमें दादी ने कितनी अच्छी बात बताई कि एक वरदान लेने के लिए भक्त कितनी भक्ति करता है, कितनी तपस्या करता है, और बाबा हमें वरदान, दादी ने तो बड़ी अच्छी बात बताई कि बाबा हमें वरदान अपने आप से दे देते हैं, पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि बाबा तो पोस्ट में भी वरदान भेज देता है ना। रोज मुरली जाती है ना, हमारे पास आ जाती है ना वरदान। तो हम इतने लक्की है, तकदीरवान है, वो सुख की महसूसता हमें करनी है और कर रहे हैं। ओम शांति, है ना। साक्षात क्या हो गया, भाग्य को याद करते थे और वो भाग्यशाली भगवान का रथ हमारे सामने, आप देखिए हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। ओम शांति।
एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई मेरे दिल में यही बात।